آج کل پرائیویٹ کلاس ہے 19 اگست 1967 اوم بےحد کا باپ بیٹھ بےحد کے بچوں کو سمجھاتے بےحد کا باپ ارتھات 500-700 کروڑ کا باپ اس پرسنالٹی میں آتماؤں کا باپ بھی ہے اور منشیہ سرشٹی کا باپ بھی ہے دونوں بےحد کے باپ اکٹھے بےحد کے بچوں کو سمجھانے والا کون ہے بےحد کا روحانی باپ اور بےحد کے بچوں میں بےحد کا پہلا بچہ کون ہے بےحد کا روحانی باپ کون ہے سپریم سول پھر بےحد کا روحانی بچہ کون ہے پرجاپتا دونوں باپ ہیں تو باپ ایک ہے منشیہ سرشٹی کا باپ اور دوسرا ہے صرف روحوں کا باپ سمجھانے والا کون ہے روحوں کا باپ اب پرشن اٹھتا ہے بےحد کا باپ کون ہے مانا منشیہ سرشٹی کا باپ سمجھانے والا بےحد کا باپ کہے یا آتماؤں کا باپ بےحد کا باپ کہے یہ تو جانتے ہو کہ سب کا باپ ایک ہی ہے کون ایک جب ایک اور دو کا سوال آتا ہے تو بےحد کا باپ ایک کون مانا کوئی ایک پرسنالٹی ہے جس کو پرم پتا پرماتما کہا جاتا ہے پرم پتا تو ایک ہی ہے ان کو سب بچے بھول گئے اس لیے پرم پتا پرماتما جو دکھ ہرتا سکھ کرتا ہے ان سے سکھ کوئی کو ملتا نہیں سکھ نہ ملنے کا کارن کیا بتایا کہ اس بےحد کے پرم پتا پرماتما کو سب بھول گئے ہیں پرم پتا کو بھی بھول گئے اور پرم آتما کو بھی بھول گئے دونوں کا جو کمبینیشن ایک پرسنالٹی ہے وہ بھی بھولا ہوا ہے جو سنگم میں ہی پرتکش ہوتا ہے اب تم بچے جانتے ہو باپ ہمارے دکھ کیسے ہر رہا ہے پھر اور سکھ سبھی اور سکھ شانتی میں چلے جائیں گے پرنتو سب تو سکھ میں نہیں جائیں گے کچھ سکھ میں کچھ شانتی میں چلے جائیں گے کوئی ستیگ میں پارٹ بجاتے ہیں کوئی تریتا میں کوئی دواپر میں तुम जब सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हो। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलजुल कर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। इसलिए बंदगी करते हैं। क्या बहिष्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? कौन से मुसलमानों का तबका बहिष्त के लिए बंदगी करता है और कौन से मुसलमान अल्लाह के पास जाने के लिए बंदगी करते हैं? अल्लाह के घर को बहिष्त तो नहीं कहा जाता। वहां तो आत्माएं शांति में रहती है। वहां अल्लाह के घर में शरीर नहीं रहता। फिर अल्लाह कैसे कहा जाए? अल्लाह माने क्या? अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा। ऊंचे और नीचे 16 वर्ड की बात है या इस दुनिया की बात है? ये जानते होंगे। अल्लाह के पास हम आत्माएं जावेंगी। अभी सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जावेंगे। अल्लाह को जानते ही नहीं। अब मनुष्यों को राय देवे हैं कि अल्लाह बाप आए सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। विश्व में शांति कैसे होती है, कब थी, ये उनको कैसे समझावे? सबसे बच्चे जो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनकी ये चिंतन रहता है। किनों को? सबसे बच्चों को ये चिंतन रहता है कि कैसे समझावे। ये सब बातें मनुष्य नहीं समझते हैं। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। और सारी दुनिया की मनुष्य मात्र की जानकारी अर्थात पार्ट का भी परिचय दिया। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे देवे? सो बताते हैं। बाप सबको कहते हैं, अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम खुदा के घर चले जाओगे। कहने वाला कौन है? शिव बाप। सबको कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कौन से बाप को? बुझमाना कौन? शिव बाप को याद करो, बिंदी बाप को याद करो, तो तुम खुदा के घर चले जाओगे। मतलब खुदा अलग है, शिव अलग है, तो खुदा कहा ही जाता है जो खुद आता है, किसी के बुलाने से नहीं आता है। गोल्डन एज अथवा बहिष्ट में सब तो जावेंगे, जावेंगे गोल्डन एज में सब जावेंगे, सब तो नहीं जावेंगे। वहां तो एक ही धर्म होता है, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई को नाराज होने की बात नहीं है, इस बात की नाराजगी कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जावेंगे, हम शांति धाम में ही क्यों जावेंगे। मनुष्य तो शांति ही मांगते हैं ना, वो शांति तो मिलती है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में, और आत्माएं सब आती भी हैं शांति धाम से। वहां फिर तब जावेंगे जब नाटक पूरा होगा, बाप आते भी है पति दुनिया से सबको ले जाने, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम शांति धाम में जाते, बाद में सुखधाम में आवेंगे, और ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं कौन कौन सी हैं इस युग में पता चलता है। कहते भी है पुरुषोत्तम अथवा उत्तम ते उत्तम पुरुष, जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकती। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करने से, षट चक्र को जानने से, और साथ में दैवी गुण धारण करने से तुम पुरुषोत्तम बन जाओगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ याद से पुरुषोत्तम बन सकते हैं। नहीं, दैवी गुण भी धारण करने पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाबा ने समझाया था कि उस समय सभी के करैक्टर्स, इस समय सभी के करैक्टर्स बिगड़े हुए हैं, नई रचना में तो करैक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं, भारतवासी ऊंच करैक्टर वाले थे, ऊंच ते ऊंच करैक्टर वालों को कम करैक्टर वाले माथा टेकते हैं। उनके करैक्टर वर्णन करते हैं, ये तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को कैसे समझावे, कौन सी सहज युक्ति रचे। ये है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है, मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, ये भी एक प्रकार का देह अभिमान है जो कहते हैं मेरे में ज्ञान है। इस बात में तो आत्माभिमानी बनना है। वास्तव में मनुष्यों में ज्ञान है क्या? जो भी ज्ञान है वो अज्ञान ही है। सच्चाई को ज्ञान कहा जाता है। सच्चाई का ज्ञान सिवाय सत्य परम पिता परमात्मा बाप के और कोई के पास होता ही नहीं। अगर कोई के पास होता भी है तो बाप से ही मिलता है। तो ये देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूं, मेरे में ज्ञान है। युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं। वो भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते। समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। निराकार भगवान ही भगवान है, परंतु उनका नाम रूप देश काल क्या है, रूप रंग क्या है, कुछ नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं है कि नाम रूप से न्यारी वस्तु कैसे हो सकती है। इम्पॉसिबल। अगर कहते हैं पत्थर भीतर में है, कण कण में है, तो वो तो नाम रूप हो जाता है। कब क्या बोलते हैं, कब क्या कहते रहते हैं, इन बातों में बच्चों का दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए। कैसे मनुष्यों को समझा लो, ये मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करते। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को बैठ करके याद करते हैं। तुम जानते हो वो हम लोगों के पास तो पहुंच नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचे। फिर अल्लाह से नई सृष्टि रचते हैं, तो ये सब बातें कैसे समझा लें। 1967 की वाणी का दूसरा पेज। इसलिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को बतला दे। ये इस समय सभी आयरन एज में तमो प्रधान है। जरूर कोई समय गोल्डन एज में थे। गोल्डन एज को प्योरिटी की वो एज कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी, सोने में भी खाद डाली जाती है। आत्मा पहले सत्व प्रधान, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तो बाप को आना है। बाप ही आए फिर सत्व प्रधान सुख धाम बनाते हैं। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से गुजरती है, सुखधाम भी चार अवस्थाओं से गुजरता है। बाप कौन सा सुखधाम बनाते हैं? सत्व प्रधान सुखधाम बाप बनाते हैं। फिर सुखधाम को तमो प्रधान कौन बनाता है? रावण होता है, है? संगम युग में जो रावण संप्रदाय में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो ही सुखधाम को भी तमो प्रधान बनाती है। बाप आए सत्व प्रधान सुखधाम बनाते हैं। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, जो सत्व प्रधान सुखधाम है उसमें सिर्फ कौन होंगे? सिर्फ भारतवासी होंगे। और जितना डिग्रेड होता जाता है सुखधाम, उसमें उतने ही परसेंटेज में और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं मिक्स होती जाती है। शांति धाम में तो सब प्योर रहती है, वहां कोई भी चर्ची नहीं। फिर यहां आकर के आते आते प्योर बन जाते हैं। हरेक मनुष्य सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आते हैं। अब उन्हों को कैसे बतावे कि तुम सब अल्लाह के घर कैसे पहुंच सकते हो? देखे सब संबंधों को छोड़, अपन को आत्मा समझो तो तुम अल्लाह के घर में पहुंच जावेगी। भगवान वाच है, देह के धर्म सब छोड़ अपन को आत्मा समझो। मेरे को याद करने से ये जो पांच भूत हैं वो निकल जावेंगे। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन चिंता रहनी चाहिए, बाप को भी चिंता हुई तब तो ख्याल आया ना कि जाऊं जाकर के सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है, अकेले बाप क्या करेंगे? तो ये विचार सागर मंथन करो, क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाए। समझाने में टाइम तो लगता है। अब इतने मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को कैसे सुनावे? सर्विस तो बच्चे करते भी हैं, कोई अच्छी करते हैं कोई कम करते हैं। जैसे बच्चों ने सेमिनार किया उसमें भी बहुत राय निकालते हैं। क्या युक्ति निकाले जो मनुष्य समझ जाए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है? इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बनते हैं। पहले ऊंच होते हैं फिर नीच गिरते हैं। पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तो तमो प्रधान नहीं बन जावेंगे। हर चीज पहले सत्व प्रधान फिर सत्व रजो तमो होती। बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं, फिर भी कोई कुछ समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? इतनी प्रदर्शनियां मेले मलाखड़े आदि करते हैं, क्यों नहीं समझते? बच्चों में ज्ञान है? बच्चों में भी ज्ञान नहीं है, तो प्रदर्शनी कैसे करते हैं?
पूरा ज्ञान नहीं।
प्रदर्शन करना ही संपूर्णता की निशानी नहीं है। भारत की परंपरा रही है ज्ञान और योग को गुप्त रखने की। विदेशियों की परंपरा रही है प्रत्यक्ष करने की, प्रदर्शन करने की। तो बोला बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं। जो असली चीज है उसको प्रदर्शन करने की दरकार ही नहीं। तो सोचना चाहिए और क्या उपाय करें। भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना। उन उपायों के लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर में संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है। वह चंद्रमा तो है जड़, और यह चंद्रमा तो है चैतन्य। कौन सा? तो हम कैसे समझावें? मुसलमानों के मुर्शिद को समझावें, तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो? ये विचार सागर मंथन करना है। बड़े बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं। बड़ों से मिलते हैं। सभी मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है। क्या नाम है उसका? जामा मस्जिद। वहां जाते हैं ईद मुबारक देने के लिए। अभी मुबारक तो ये है, हम सब दुखों से छूटे सुखधाम में जावे, तब कहा जाए ईद मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं। कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं। सदैव खुशी रहो, सुखी रहो। अब तुमको तो पता है, बाप ने समझाया हम एक दो को मुबारक कैसे देवे। इस समय हम वेद के बाप से युक्ति मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है, बाप समझाते हैं। तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्म के लिए पद्मपति बन रहे हो। अब सभी मनुष्य कैसे बाप से वर्षा लें? सबको मुबारकबाद। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको मुबारक नहीं दे सकते। तुमको जानते ही नहीं है, मुबारक देवे तो खुद भी मुबारक बने लायक बने। तुम तो भुक्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो, मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं, तुम कितने खुश नसीब हो। कोई को लॉटरी मिलती है या बच्चा जानता है कि जन्म हुआ तो कहते हैं मुबारक, बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। तुमको तो दिल ही दिल में खुशी होती है, अपन को मुबारक देते हो, हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं, अब कैसे समझावे, जो समझे हम अपन को मुबारक देते हैं। बाप समझाते हैं आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई है सो आप सदगति को पाती। मुबारक तो एक ही सबको है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ जाएगा। जो ऊंचे ते ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो, आप सूर्यवंशी कुल के बने। सूर्यवंशी कुल में आप महाराजा महारानी बनते हैं। उनकी सात सरस्वती की वाणी का तीसरा पी, तो नीचे कुल वाले जो होंगे वो न सूर्यवंशियों को मुबारकबाद देंगे। जो विजयमाला के दाने बनते हैं जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगा। सूर्यवंशियों को मुबारक मिलेगा, सूर्यवंशियों को मुबारक मिलेगा और चंद्रवंशियों को चंद्रवंशी मुबारक देने वाले बनेंगे और सूर्यवंशियों को मुबारक मिलेगा। उनकी ही पूजा होती है, इनकी 16 कला संपूर्ण की या चंद्रवंशी 14 कला संपूर्ण की। आत्मा को भी मुबारक जो ऊंच पद पाती है। फिर भक्ति मार्ग में उनकी पूजा होती है, मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि क्यों पूजा होती है, तो बच्चों को यही चिंता करनी है कि ये कैसे समझावे, हम पवित्र बने हैं दूसरों को कैसे पवित्र बनावे। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में ये पैगाम पहुंचावे। पर्चे गिराने से तो सबको संदेश मिलती ही नहीं है, ये तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि सब है अंधे की औलाद अंधे, उनको बिल्कुल पता नहीं है कि बाप के पास कैसे पहुंचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के लिए हैं, परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, दान पुण्य आदि करते आए हो, परंतु रास्ता तो मिला ही नहीं। कह देते हैं ये सब अनादि चलता चला है, परंतु कब से शुरू हुआ ये विचारों को पता नहीं है, अनादि का अर्थ नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, ये भक्ति कल्प आधा कल्प चलता है, सत्युग में ये भक्ति होती नहीं है। बात होता है 21 जन्मों का ज्ञान का प्रारब्ध, वो है सुख और भक्ति में है दुख, बच्चे जानते हैं हम 63 जन्म में भक्ति करते आए, ये बातें भी कोई समझते नहीं है, कोई बहुत भक्ति करते हैं, कोई कम करते हैं। वह लोग इस जन्म के भक्तों को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं। अभी तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है किसने बहुत भक्ति की है, आदि वालों ने बहुत भक्ति की है या मध्य और अंत वालों ने बहुत भक्ति की है, या आज के जो भक्त हैं बहुत भक्ति करते हैं उन्होंने बहुत भक्ति की है। ये सब राज की बातें एक एक को तो बैठ नहीं समझा सकते। कोई अखबार में डाले टाइम तो लगेगा, सबको पैगाम तो इतना जल्दी नहीं मिल सकता, सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग भी आ जाने, परंतु ये तो हो नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं ये कोई भी जानती नहीं, पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे, देवी देवता धर्म वाले कौन है ये मालूम कैसे पड़े। बाप कहते हैं एक तो शिव के पुजारियों को पकड़ो जो आखिरी जन्म में भी किसकी पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो इससे क्या साबित होता है कि यही पक्के हिंदू धर्म के हैं। वो जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे, बाप को याद करते हैं वर्षा लेने के लिए। शिव के भक्त को तुम समझा सकते हो क्या? शिव के भक्तों को तुम आसानी से समझा सकते हो, और महाकाली के भक्तों को जल्दी नहीं समझा सकते। शिव बाबा है सबका बाप, तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे कि वह ठिककर भीतर सब में है, बाप का तो एक ही रथ मुकर्रर है, ठिककर और भीतर बुद्धियों में आता नहीं है, इस भागीरथ में प्रवेश कर पतितों को पावन बनाते हैं। तो ठिककर भीतर में कैसे हो सकता है, ठिककर भीतर में आवेगा तो ठिककर बुद्धि बनावेगा क्या? बाप से इन देवी देवताओं को वर्षा मिलता है, बनते हैं कलयुग और सतयुग के बीच के संगम पर। परंतु अब यह बातें औरों को कैसे समझावे कि यह पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम अर्थात ऊंचते ऊंच पुरुष, वो तो देवताओं को ही कहा जाता है। ये लक्ष्मी नारायण गोल्डन एज पार्श्व बुद्धि, बोई फिर आयरन एज में आकर के पत्थर बुद्धि बनते हैं, भारतीय गोल्डन एज फिर आयरन एज बनता है, तो ये समझाना पड़े। ऊंचते ऊंच भगवान बाप है, उनसे हम वर्षा कैसे लेवे। इस समय तो सब पतित हैं, जो पतित है वो बुलाते भी हैं, हे पतित पावन निराकार, उसको याद करते हैं और किसको नहीं। आत्मा पतित पावन बाप को बुलाती है कि हमको आकर के पावन बनाओ, ये कह के नहीं बुलाते कि हे पतित पावन आओ हमको ज्ञान सुनाओ, और ज्ञान सुना के चले जाओ। उनका समय है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि का, पावन बनाए फिर पावन दुनिया में ले जाते हैं। इन्हें लक्ष्मी नारायण ने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया, भारत में इस समय तो कोई राजाई नहीं है जिनकी राजाई को जीत करके उन्होंने राज्य लिया हो। वो कोई लड़ाई करके तो राजाई नहीं पाते हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण है। जो नर नारायण है वो कोई लड़ाई करके तो राज्य नहीं पाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बना जाता है ये कोई को पता नहीं है, तुमको भी अभी बाबा से पता पड़ा है तो औरों को कैसे बता दें। जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पावे, पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए, जो अपन को जान और अल्लाह को याद करे। बोलो, तुम ईद मुबारक कहते हो, तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है? जिसके लिए तुमको इतनी खुशी होती है, ये काम तो तुम वर्षों से करते आए हो और ये तुम्हारी ईद मुबारक वर्षों से चली आती है। कब खुदा के पास जावेंगे या जावेंगे ही नहीं, तो ये बातें सुनकर के मुझे पढ़ेंगे। बरोबर हम जो ये पढ़ते हैं क्या करने के लिए, ऊंचते ऊंच तो एक अल्लाह ही है ना। बोलो, अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो, आत्मा चाहती है हम अल्लाह के घर जावें, तो वहां कैसे जावेंगे। इस समय सब पतित आयरन एज दोजख में है, अभी यहां बहिष्ठ तो है नहीं, तो अब तुम अल्लाह के पास कैसे जावेंगे। ये बात बताओ, वो बता ही नहीं सकेंगे। 1967 की वाणी का चौथा पेज, सदैव तो जो दोजख नहीं होता होगा, बहिष्ठ भी तो होता है ना, नहीं तो बहिष्ठ का गायन कैसे करते हैं। आत्मा पहले पहले प्योर थी फिर पतित बनी है, अब पतित आत्मा के देश को बहिष्ठ को नहीं कहेंगे। सब आत्मा इस समय पतित है, सब दोजख में है, तो पावन कैसे बने जो अल्लाह के घर जावे। वहां अल्लाह के घर में विकारी आत्मा तो होती नहीं है, वैसलैसी होनी चाहिए। और आत्मा कोई फट से तो सत्व प्रधान नहीं बनती है। कोई समझते हैं ना अल्लाह ने प्रवेश किया तो जिसमें प्रवेश किया वो फट से सत्व प्रधान बन जाता होगा। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। कौन से बाबा का है? तब तो समझते हैं ना। युक्तियां निकालनी चाहिए किसको कैसे समझाना। मठ के एक दो बड़ों को पकड़ो जो फिर सबको समझा लो। सबसे बच्चे ही मंथन करके फिर सर्विस कर सकेंगे। मंथन चलता है ना इस टॉपिक पर ऐसे ऐसे समझावे। सबसे बुली नहीं होंगे तो विचार सागर मंथन कैसे चलेगा। जिनका मंथन चलता है वो फिर सर्विस भी करते हैं। मंथन जो नहीं करते हैं वो सर्विसेबल भी नहीं है। खुद भी समझते होंगे कि जो हेड्स हैं उनको पकड़ने से आवाज जल्दी निकलेगा। कहने लग पड़ेंगे ये सन्यासी आदि तो बिल्कुल उल्टा ज्ञान सुनाते हैं। उल्टी बातें सुनाए झूठ बोलते रहते हैं। उनकी आबरू ही चट हो जाए। बड़े बड़े पोप पादरी हैं उनको थोड़ा ही मालूम है कि ये संगम युग का समय है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो और कोई इन बातों को समझा नहीं सकता। पोप समझाते हैं लड़ाई ना करो परंतु उनकी भी बात मानते थोड़े ही है। अब उनसे भी कोई बड़ा चाहिए। तुम तो बिल्कुल साधारण। पोप को भी समझाने की तुम कोशिश की परंतु शायद अभी समय नहीं है। वो जल्दी समझ जाए तो रिवॉल्यूशन हो जाए। समझते तो है ना दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इतना तो समझते जरूर है कि खुदा का हाथ है। जो नई दुनिया की स्थापना कराए और पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया। नई दुनिया की स्थापना होती है पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूं। नई दुनिया की स्थापना किसके द्वारा है? ब्रह्मा द्वारा। और पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूं ये किसने बोला? खुदा का हाथ तो है ना। कौन सा हाथ? बच्चे जानते हैं कल पहले मुआफे कम फिर से राजी करेंगे। स्थापना विनाश पालना त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ है परंतु पूरी रीति कोई समझते नहीं है। भल कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश परंतु क्या बाबा कहते हैं कि विनाश करो? ये तो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली कर्मातीत अवस्था का टाइम होगा तो विनाश होगा। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है कि शंकर को प्रेरणा दी या शंकर ने प्रेरणा दी, फिर कौन सी बात है? ड्रामा में तो नूद भी कब होगी? ड्रामा तो समय चक्र का नाम है, समय चक्र तो जड़ है, समय भी काल भी जड़ है, जड़ को परिवर्तन करने वाला कौन है? तो वो चैतन्य जो परिवर्तन करने वाला है वो जब तक कर्मातीत न बने तब तक विनाश नहीं हो सकता। प्रेरणा की कोई बात नहीं है, ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली कर्मातीत अवस्था का टाइम होगा, विनाश होगा। आज फलानी चीज खाने की प्रेरणा नहीं है अर्थात विचार नहीं है। प्रेरणा माने क्या? विचार, बाकी प्रेरणा और कुछ भी नहीं है। प्रेरणा का अर्थ और कुछ नहीं होता, तो औरों का भी कल्याण करना है। क्या क्या औरों का कल्याण करना है? अपना भी कल्याण किस बात से होगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, औरों का भी कल्याण इसी बात से होगा। देह देह के संबंधों देह के पदार्थों से मोह नष्ट हो जाए तो कर्मतीत अवस्था हो जाए। बहुतों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा, अपन को भी दैवी गुणों में लाना है। किसका कल्याण ही नहीं करते हैं तो पूछ कर भी क्या करेंगे कि इस हालत में हम मर जावे तो क्या होगा? धूल भी नहीं मिलेगा, धूल भी नहीं मिलेगा। समझते हैं हम बाबा के पास रहते हैं, रहते तो बाबा के पास हो परंतु करते क्या हो? सर्विस कितनी करते हो? जो अनपढ़े होंगे वो पढ़े आगे भरी ढोवेंगे, ये तो सीधी सी बात है। तो जितना हो सके सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। भक्ति भी तो मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं ना। अगर कहते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया उसने गाली खाई तो जरूर तुमको भी गाली खानी पड़े। शिव बाबा को भी गाली देते हैं, टिककर भीतर में कह देते हैं, फिर ब्रह्मा को भी ढेर गाली देते हैं। उन ब्रह्मा से डरते नहीं है, बल भू भू करते रहते हैं। तुम अपनी शांति में रहो, खुशी रहनी चाहिए। हमको तो बाबा मिला है, अभी हम सब दुखों से छूटने वाले हैं। अच्छा पुरुषार्थ करने वाले ही दिल पर चढ़ते हैं। अपन को देखना चाहिए इस हालत में हमको क्या पद मिलेगा, किस हालत में। जब हम कोई की सेवा ही नहीं करते, सर्विस ही नहीं करते, तो क्या पद मिलेगा? ऊंच पद कब मिलेगा? सेवा करेंगे, चढ़ती कला कब कही जावेगी? चढ़ती कला उसकी निशानी है, सर्व के भले में लगे जावेंगे। ये तो कल्प कल्प की बात हो जाती है, सर्विस के लिए कुछ न कुछ विचार सागर मंथन करना है और समाचार पूछने झरमुई झगमुई करने से तो बोलो शिव बाबा की याद में रहकर के काम करो। भंडारे में भी एक दो को शिव बाबा की याद दिलाते रहो, एक दो का रहम दिल बनना है, अपन पर भी और औरों पर भी रहम करो। तो बाबा भी मिसाल देते हैं, रीढ़ बकरियां क्या जाने सुरमंडल की साज को, तो जो सांडे दे अभिमानी होंगे वो उन ज्ञान की बातों को क्या समझेंगे और क्या फॉलो करेंगे, वो तो जंगली काम ही करते रहते। मित्र संबंधी आदि बुलाते हैं तो उनकी भी सर्विस करनी है, सच्ची दिल से जो समझाते होंगे वो ही समझा सकेंगे, नहीं तो समझाने का भी अकल नहीं आवेगा। योग ही तब योग हो तब ही किसी को तीर लगेगा। जौहर नहीं होगा तो तीर नहीं लगेगा। तो योग का जौहर भी चाहिए, योग के जौहर बिगर तलवार क्या काम करेगी। जितना याद में रहेंगे उतना जौहर भरेगा, इस याद में ही बिघन पड़ते हैं। अच्छा ओ।